इस प्रकार आदिनाथ भगवान केवल ज्ञान के पश्चात विश्व कल्याणकारी दिव्य ध्वनि को प्रथम भार इस आर्यखंड में व्यक्त किया और वह दिग्दिगंतर तक उनकी पवित्र वाणी अहिंसा धर्म को प्रसारित करने वाली भक्तजनों का कल्याणकारी वाणी मिश्रित हो गई। उनकी दिव्य ध्वनि 18 भाषाओं में रूपांतरित होती हुई भव्य जीवों के कानों तक पहुंच गई। ध्वनि कन्नड़ भाषा में भी रूपांतरित हो गई। कन्नड़ वाले प्रभु की वाणी को समझने लगे। वह हिंदी भाषा में भी खिड़ी कानों तक आई शब्द के रूप में और कानों में प्रवेश करते समय श्रोता हिंदी जानने वाला उनको हिंदी समझ में आने लगी। इंग्लिश जानने वाले इंग्लिश में समझने लगे। प्रकार के प्रश्नों को पूछने लगे। जो शब्द गूढ़ थे उनका अर्थ उन्हें समझ में नहीं आया तो खड़े होकर किस प्रकार पूछते हैं। ये भव्य जीव अपने हित के लिए आत्म कल्याण के लिए प्रश्न अंतरंग से पूछते हैं और नाना प्रकार के जो प्रश्न मन में उठ रहे थे वे एक एक करके पूछते हैं। पूछेंगे ना? हाँ, माइक देना।
नमोस्तु भगवन् नमोस्तु भगवन् नमोस्तु भगवन् षष्ठम काल में चंद्र सूर्य तारे रहे थे।
षष्ठम पदा रहते थे, चाहे वह भोग भूमि का काल हो, कर्म भूमि के तीन काल हो, चौथा काल, पंचम काल, छठा काल, सभी कालों में सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि ये आकाश में सदा परिभ्रमण करते हैं। इनका कभी अस्त नहीं होता, ये कहीं गायब नहीं होते। कल्प वृक्षों का प्रकाश होने से वे दिखते नहीं, परंतु आकाश में अवश्य सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र इत्यादि होते हैं। छठे काल में भी ये रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं।
नमस्तु वाराणसी, नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान। इस काल में
अकाल पड़ना, भूकंप होना, सुनामी आना इत्यादि प्राकृतिक जो प्रकोप होता है ये निरंतर चलते हैं। ये सब कुछ काल क्रम से भी होता है और इस काल क्रम से मनुष्यों की बुद्धि पापमय होने से उनके मन वचन काय की प्रवृत्ति शाकाहार को छोड़कर मांसाहार में हो जाती है। प्राणियों पर दया करना जो कर्तव्य था उस कर्तव्य को भूलकर ये जो अवक्ष है, प्राणियों का कलेवर है, जो खाने के योग्य मनुष्य मात्र के लिए होता ही नहीं। मनुष्य का ओरिजिनल आहार तो शाकाहार है, लेकिन अपनी प्रकृति को भूलकर, अपनी प्रकृति को न समझते हुए ये मांसाहारी होते हैं। इसका प्रभाव निसर्ग पर भी पड़ता है। यह निसर्ग दुखदायी प्रकृति होकर के कभी अकाल पड़ना, पानी का नहीं बरसना, कहीं सूखा पड़ना, कहीं भूकंप पड़ना समाप्त हो जाएगा। ये कर्म वृत्ति और निकाचित कर्मों को क्षय करने का कोई उपाय है, कोई साधन है, तो कहते हैं नित्य समोसरण में आकर जो प्रभु का दर्शन करता है और नित्य देव पूजा, देव दर्शन, वीतरागी भगवंतों का दर्शन करता है, वह निवृत्ति और निकाचित जैसे अशुभ कर्मों को निर्जरा करके वे सम्यक दर्शन को उपलब्ध होता। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होते समय निवृत्ति और निकाचित कर्म जैसे मिथ्यात्व, जो सत्तर कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट स्थिति बंद के रूप में होती है, वह और उसका अनुभाग भी उत्कृष्ट होता है, वह निवृत्ति रूप हो या निकाचित रूप हो, वह भी नष्ट हो करके सम्यक दर्शन की उत्पत्ति यह जीवात्मा कर सकता है।
स्त्री पर आकर छेद करने के लिए और इस संसार से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए?
सबसे पहले स्त्री पर्याय को छेद कर हम मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें? स्त्री पर्याय का छेद अहिंसा धर्म पर आस्था रखते हुए सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। छेद नवतत्व पंच अस्थि का ये भगवान के द्वारा समझाए गए सिद्धांत है। इसमें एक सिद्धांत अजीव तत्व का है, एक जीव तत्व का है। बड़ा गहरा अर्थ इन सब का होता है। उनका अध्ययन, चिंतन, मनन करने से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक को सहित यदि हम व्रत धारण करेंगे, प्रतिमान हरि बनेंगे, अनुवृत्ति बनेंगे, तो अनुवृत्ति बन करके लास्ट में समाधि मरण करेंगे, बाल पंडित मरण को साधेंगे, तो उसके माध्यम से यदि एक बार समाधि मरण अच्छी तरह से हुआ तो जीव पुनः लौट कर कभी भी स्त्री पर्याय में नहीं आ सकता। आप प्रतिमाधारी बने, सम्यक्त्व को पहले धारण करें, सम्यक्त्व सहित भाव अनुवृत्त और द्रव्य अनुवृत्त इन दोनों को जो स्वीकार करता है उसका पंचम गुणस्थान होता है। उसी पंचम गुणस्थान के साथ जिनका मरण होता है वह नियम से कम 3 भाव में और अधिक से अधिक 8 भाव में स्त्री पर्याय पाए बिना अंतिम भाव में वह निर्वाण को प्राप्त होता है। स्त्री पर्याय का छेद समाधि मरण से होता है।
नमोस्तु भगवान। भगवान क्रमबद्ध पर्याय यदि निश्चित है तो
इनको द्रव्य भी कहा है, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। इन द्रव्यों को अवलोकन हम सदा ही करते रहते हैं। इस संसार में जीव द्रव्य है तो उसके गुण भी हैं और उसकी पर्याय भी हैं। एक द्रव्य वर्तमान में जिस पर्याय को व्यक्त किया हुआ रहता है वह भविष्य में उसकी वही पर्याय होगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। केवली भगवान अपने केवल ज्ञान में जो देखते हैं समस्त चराचर जीव अजीव सभी तत्वों के, सभी द्रव्यों के भावी पर्याय, वर्तमान पर्याय, भूत पर्याय सबको जानते हैं। लेकिन वस्तु स्वरूप ऐसा है कि वस्तु स्वरूप में नियत परिणति भी होती है और अनियत परिणति भी होती है। नियत परिणति से जब कोई द्रव्य, कोई जीव आदि परिणमन करता है तो उसकी एक एक पर्याय क्रमशः निश्चित होती है, और जब अपने स्वभाव अनियत स्वभाव से जीव परिणमन करेगा तो वे पर्याय भावी में जो दिखाई देती हैं केवल ज्ञान में, भी अक्रम से ही हो सकती है, क्योंकि जीव अपने स्वभाव से परिणमन करता है, वह परिणमन का स्वभाव अपना होता है, उसमें हेरा फेरी भगवान ही नहीं कर सकते। नियत परिणति होती है तो भगवान कहते हैं इसके बाद यही पर्याय होगी, इसके बाद यही पर्याय होगी, इसके बाद यही पर्याय होगी, उसमें एक क्रम बना रहता है। और यदि उसमें अनियत स्वभाव से परिणमन करने वाला द्रव्य माना जा रहा है तो उसमें पर्याय आगे पीछे भी हो सकते हैं। जैसे कि आपके भूत के पर्याय बहुत सारी हैं, अनंत हैं, लेकिन भावी पर्याय भी अनंत हैं। भावी पर्यायों को आप पूछते हैं कि इसके बाद मैं क्या होऊंगा, उसके बाद मैं और क्या होऊंगा, इस प्रकार भविष्य पूछने की आदत मनुष्यों को बहुत रहती है, भविष्य की जिज्ञासा बहुत रहती है। और एक पर्याय जब उत्पन्न होती है द्रव्य से तो वह वर्तमान पर्याय मानी जाती है, और इसके पश्चात जो हम बनने वाले होते हैं, मान के चले हमारा अगला भव देव पर्याय भी दिख रहा है और त्रिरंच पर्याय भी है या नरक पर्याय भी है और मनुष्य पर्याय भी है, ये चारों पर्याय भावी में दिखाई दे रहे हैं, इसमें कौन सा किस प्रकार से वह द्रव्य परिणमन करेगा। भगवान बताते हैं यदि वह जीव अनियत स्वभाव से परिणमन करता है तो अनियत पर्याय प्रकट होती है, उसमें निश्चितता नहीं होती, यानी वह अपने परिणामों के आधार पर जैसा भी वह पुरुषार्थ करेगा उस पर्याय को प्राप्त कर सकता है। यदि पाप करेगा नरक जा सकता है, पुण्य करेगा धर्म स्वीकार करेगा स्वर्ग भी जा सकता है। ये अनियत स्वभाव से परिणमन का प्रभाव होता है। द्रव्य में दो प्रकार का स्वभाव होता है, नियत स्वभाव और अनियत स्वभाव। नियत स्वभाव में जो होना होता है वही होता है, अनियत स्वभाव में जो होना होने वाला होता है वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो पर्याय दिखाई देती है वो अक्रम से कुछ भी हो सकती है। भगवान के केवल ज्ञान में अनियत रूप ही आती है और जिस रूप में आती है उसी रूप में केवली भगवान उपदेश देते हैं। आप पुरुषार्थ करेंगे तो स्वर्ग जा सकते हैं पुण्य करके, पुरुषार्थ नहीं करेंगे इधर पाप की ओर लग जाएंगे तो पाप के प्रभाव से नरक भी जा सकते हैं। ये अनियत पर्यायें अपने अधीन होती हैं, केवल ज्ञान में जरूर दिखाई देती हैं, अनियत पर्यायें अपने अधीन होती हैं। केवली भगवान भी इन पर्यायों को चेंज नहीं करते, परिवर्तन नहीं करते, अपनी पर्यायें स्वतंत्र होती हैं, दिखाई जरूर देती हैं, अनियत स्वभाव होने के कारण अक्रम से भी होती हैं, ये केवली भगवान कहते हैं। और नियत पर्याय में अक्रम नहीं होती, क्रम से ही पर्याय एक एक करके निकलती हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है या नहीं, हर एक जीव प्राप्त करता है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर ये है कि समोषण की 20,000 सीढ़ियों को चढ़ करके जब हम मानस स्तंभ का दर्शन करते हैं, वहाँ पर सम्यक दर्शन का दर्शन प्राप्त करने का अवसर हमें पहली बार मिलता है। वहाँ अगर सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक्त को लेकर के हम जब 8वीं सभा के अंदर जाएंगे, मनुष्य सभा में जाकर के बैठेंगे तो वहाँ सम्यक दृष्टि बनकर भगवान की दिव्य ध्वनि सम्यक्त पूर्वक सुनेंगे। जो जीव मिथ्यात्वी होता है वह समोषण के अंदर पाया नहीं जाता, ऐसा जिनेन्द्र भगवान के वचन है। समोषण सभा में जीव मिथ्या दृष्टि पाए नहीं जाते, क्योंकि अंदर जाने वाले जीव बाहर मानस्तंभ इत्यादि के माध्यम से ही उनके निमित्त से ही सम्यक दर्शन प्राप्त करके अंदर प्रवेश करता है, तो अंदर जाने वाले सभी ऐसा पता चलता है कि सारे सम्यक दृष्टि होते हैं। और कहीं ऐसा आधार भी मिलता है कि सर्वोच्चरण सभा में मिथ्या दृष्टि जीव भी होते हैं, तो इस प्रकार दो मत भी आगम परंपरा में मिल सकते।
हे प्रभु नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आजकल पंचम काल में ऐसा ही दिखाई देता है कि जो लोग श्रद्धा पूर्वक जिन दर्शन करते हैं, सत्य वचन करते हैं, उनको बहुत बार ऐसा भी होता है कि उनको लौकिक सुख प्राप्त नहीं होता है। और जो लोग असत्य बोलते हैं, अहिंसा व्रत धारण नहीं करते हैं, वो लोगों को लौकिक सुख बढ़ते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये विपरीत परिस्थिति क्यों है?
देखें कि पूर्व भाव में बांधे हुए कर्मों का फल होता है। पूर्व भाव में हम जो कर्म बांधते हैं वो निश्चित रूप से इस भाव में उदय में आकर हमको फल देते हैं। शांति रखिए, इधर से बहुत आवाज आ रही है। पूर्व भाव में जो कर्म बांधते हैं उनका उदय आता है। हो सकता है वर्तमान में कोई भव्यात्मा पाप करता हो, पंचेंद्रिय विषयों में उलझ जाता हो, परिग्रह को बढ़ाता हो और रात दिन आत्मगौत ध्यान के साथ अपना जीवन व्यतीत करता हो, तो वर्तमान में तो यह पाप कर्म को बांध रहा है, किंतु पिछला पूर्व जन्म का पुण्य कर्म का उदय हो और उस उदय के कारण से वह सुखी भी रह सकता है। वर्तमान में पाप करे और पूर्व भाव के पुण्य के उदय में सुखी बने, ये संभव है। और वर्तमान में पुण्य करे, पिछले भाव का पाप कर्म का उदय हो और वह उदय में आया और सब कुछ अच्छा करता हुआ भी वह दुख को पा सकता है। ये दोनों कर्म की देन है, कर्म का खेल है। प्रत्येक समय कर्म के बिना जीव को कुछ भी नहीं होता, कर्म का फल मिलता रहता है।
तो इस वक्त उसे क्या करना चाहिए अगर कर्म का फल उसको नहीं मिल रहा है और हमेशा उसके साथ ठीक नहीं हो रहा है?
कितने ही लोग ऐसा सोचते हैं, इतना सब कुछ मैं अच्छा करता हूँ और मुझे अच्छा नहीं हो रहा है, ये कह करके वे धर्म के विश्वास को उड़ा देते हैं। धर्म पर विश्वास चला जाता है, मंदिर आना, दर्शन करना, पूजन करना, अभिषेक करना, इन सब क्रियाओं को बंद कर देते हैं और धर्म झूठा है, ऐसा कह करके वे धर्म से दूर होते चले जाते हैं। ये ठीक नहीं है, क्योंकि धार्मिक कार्यों में रहने से हमारा मन सदा निर्मल होता है, भावों में विशुद्धि रहती है, सदा पुण्य कर्म का बंद होता रहता है। भाव ही पुण्य कर्म का कारण है और भाव ही पाप कर्म का कारण है। भाव शुभ होते हैं तो ये शुभ भाव रखना तो सतत हमारे लिए अनिवार्य है। वर्तमान में पिछले भाव के कर्म के उदय के कारण से हम भले ही दुख में हों, लेकिन किसी भी प्रकार से अपने मन को बिगाड़ना नहीं चाहिए। मन बिगड़ जाता है तो पिछला भोग का पाप कर्म का उदय तो होता ही है, लेकिन वर्तमान में और पाप कर्म पुष्ट होता है। और ऐसा पाप कर्म को हम विश्वास के बिना पुष्ट कर देते हैं, तो पीछे तो पाप किए थे, अभी भी पाप कर रहे हैं, और धर्म छोड़कर चलने से हमारे लिए भविष्य में अशुभ ही अशुभ होने वाला है, ऐसा निश्चित रूप से समझ सकते हैं।
नमोस्तु भगवान।
सम्यक मिथ्यात्व, सिर्फ सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा, वो तो क्षयोक्षमी भाव में जाता है, वो तो उदय भाव होना चाहिए ना, वो क्षयोक्षमी सिर्फ सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा, वो उदय भाव होना चाहिए ना, वो क्षयोक्षमी भाव कैसा है?
देखो, क्षयोक्षमी भाव का अर्थ होता है प्रकृति का उदय, देश घाती कर्म प्रकृति का उदय और सर्व घाती का उपशमन, जैसे मोहनी कर्म में से मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये तीन कर्म हैं। सम्यक प्रकृति का उदय हो तो उस समय सम्यक मिथ्यात्व का और मिथ्यात्व प्रकृति का उपशमन अवश्य होता है। ये दोनों सर्वघाती माने गए हैं। मिथ्यात्व भी सम्यक्त्व का सर्वघाती है और सम्यक मिथ्यात्व भी सर्वघाती माना गया है। देशघाती प्रकृति सम्यक प्रकृति है। सम्यक प्रकृति का उदय हो और ये दोनों उपशमन को प्राप्त हुई हो तो इन्हीं का उदयाभावी क्षय भी होता है और देशघाती प्रकृति का उदय भी रहता है। और वर्तमान में देशघाती का उदय और सत्ता में सर्वघाती का उपशमन होने से क्षयोपशमिक दशा बनती है। जीव
उसकी अपेक्षा से क्षयोपशमिक भाव कैसा?
मिथ्यात्व का उदय हो तो जीव को तीसरा गुणस्थान होता है। ये तीसरे गुणस्थान में तो जीव का औदयिक भाव कहलाएगा। तीसरे गुणस्थान में औदयिक भाव, चौथे गुणस्थान में सम्यक प्रकृति की अपेक्षा से औदयिक भाव और पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय रहता है तो मिथ्यात्व की अपेक्षा से औदयिक भाव माना जाता है। क्षयोपशमिक भाव चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व का और सम्यक प्रकृति का उदय होने पर क्षयोपशमिक भाव होता है।
भगवान श्रीवार नमस्तु।
चिंतन न करने से मेरे जीवन में मुझे क्या करना चाहिए इसका विवेक खोया हुआ होता है। इसलिए इंसान विवेकपूर्ण कार्य को ज्ञान के अभाव में नहीं कर पाता। इसलिए धर्म करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, विवेक ज्ञान।